హరి కృష్ణ శ్రీమద్ భాగవతం ప్రథమ స్కంద పంచమ అధ్యాయ శ్లోక సంఖ్య 16 ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన మే ప్రవేశ కర్నే కే లియే గురు ఆర్ గౌరంగ సే కృపా కి యాచన కర్తే హువే మంగళ శరణ కరేంగే తాకి హమ్ జో అధ్యయన కర్ రహే హై ఉస్కా పూరా పూరా లాభ ప్రాప్త హో సకే జో కి హై कृष्ण प्रेम की प्राप्ति।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोहेष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्व पदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्भरधारुण बिम्बफलाधरोष्टा पुरेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। यं ब्रह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति ये स्तवे वेदे साङ्गपत्कमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततत्कतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतीयुत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्दा श्री अद्वैत कथाधर शिवासदि गौर भक्तवृन्दा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद पांचवा अध्याय जिसका नाम है नारद जी के द्वारा वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवत का उपदेश। अभी हमने पढ़ा कि नारद मुनि वेद व्यास जी को उनकी त्रुटियां दर्शा रहे हैं कि क्योंकि आपने अपने वेद शास्त्रों में भगवान के अतिरिक्त अलग अलग रूपों नामों और वस्तुओं के विषय में बताया है जिसकी प्रतिक्रिया के द्वारा मन बहुत विचलित हो जाता है साधारण प्राणियों का और वो एक बात को डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना है, अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाते। फिर इस तरह से वेद नारद मुनि ने आगे कहा कि क्योंकि वैसे ही सामान्य लोग के अंदर भोग करने की निवृत्ति बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, वो भोग करना चाहते हैं, संसार के भौतिक वस्तुओं का आनंद लेना चाहते और आपने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा ही करते रहने के लिए प्रोत्साहन किया है तो ये अत्यंत ही घृणित तथा अत्यंत अनुचित है। जुगुप्सितम् धर्म केतो अनुशासित धर्म के अनुसार यह ग्रहित वस्तु देने की क्या आवश्यकता थी। तो वो कहते हैं चूंकि लोग आपके उपदेश को सुनना चाहते हैं, सुनकर मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और जो निषेध बातें हैं उनकी तनिक भी परवाह नहीं करेंगे, वो रिस्ट्रिक्शन को नहीं देखेंगे। जैसे विवाह, विवाह क्यों किया जाता है? इसलिए नहीं कि मनुष्य को भौतिक भोग करने की परमिशन मिल जाती है, उसको स्टैम्प मिल गया। विवाह के अंदर भी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होता है बल्कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए, के कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति के लिए इंद्रिय भोग की परमिशन। लेकिन अब क्योंकि शास्त्र के अनुसार विवाह किया तो फिर उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं मानी जाती। लेकिन यहाँ पर ये सब पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे वेद व्यास जी से बहुत बड़ी गलती हो गई है ना, जो कुछ हो रहा है अब लोग देवताओं की ओर जा रहे हैं या अलग अलग धर्मों की ओर जा रहे हैं या अलग अलग पंथ बन रहे हैं या कुछ भी जो भी गलत हो रहा है वो वेदों के कारण हो रहा है क्योंकि जो निषेध है उसकी भावा किए बगैर भी लोग शास्त्रों का आधार लेकर ये सब कार्य कर रहे हैं, इंद्रिय भोग में लग रहे हैं। परंतु वेद व्यास जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वेद व्यास जी भगवान की शक्तियाविश अवतार है और वो जो भी कर रहे हैं वो भगवान की आज्ञा से कर रहे हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ये चाहते हैं क्योंकि जीव इस संसार में आया क्यों है, इस संसार में जीव के आने का मेन कारण क्या है कि वो प्रभुत्व जताना चाहता है, वो भगवान के दासत्व को स्वीकार नहीं करना चाहता बल्कि स्वयं आनंदित होना चाहता है। वो भगवान को आनंद प्रदान करने के इंडायरेक्टली आनंदित नहीं होना चाहता बल्कि स्वयं से अपनी चेष्टा से अपने आप को प्रसन्न करना चाहता है। तो भगवान उसे उस जीव को जो कि तटस्थ शक्ति है, अब उसकी इच्छा है कि वो भगवान की अंतरंग शक्ति की ओर आए या फिर बहिरंग शक्ति में आनंद प्राप्त करने की कोशिश करें, तो भगवान इतने करुणामय है, इतनी कृपा है भगवान के पास कि वो जीव को पूर्ण सुविधाएं प्रदान करते हैं कि ठीक है तुम्हारी इच्छा है यदि भौतिक भोग करने की तो करो, जितना जी चाहता है करो, जितना कर सकते हो करो। तुम्हें मैं वो तरीका भी बता सकता हूँ जिससे भौतिक भोग किस तरह से तुम अधिक से अधिक कर सकते हो, तो वेदों के जरिए बता दिया। इसलिए बताया कि क्योंकि जीव की प्रवृत्ति है भौतिक भोग करने की, तो फिर अलग अलग से वो करेगा ना। अगर शास्त्र में उसको इस चीज की अनुमति नहीं दी जाएगी, सही राइट पाथ नहीं दिखाया जाएगा, तो भी क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है भौतिक भोग भोगने की, तो वो करेगा, वो ढूंढेगा कोई ना कोई अनुचित उपाय। इसलिए शास्त्र में उसको वही कार्य करने की परमिशन, अब जिसकी जो रुचि, वेद व्यास जी को क्या पता नहीं था कि वो भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ, वो जानते थे, लेकिन इन सब वेदों के द्वारा जीव को ये बताना चाहते थे कि यदि इंद्रिय तृप्ति की पराकाष्ठा को भी पहुंच जाओ, कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। कर लो जितना भोग भोगना है, भोग लो, उसके बाद जब तुम्हें ये रियलाइज हो जाएगा कि भौतिक भोग जो है वो तुम्हारे संतुष्टि का कारण कभी नहीं बन सकते, तब तुम भगवान की भक्ति में आओगे। तो आज उसी के विषय में श्री वेद व्यास जी को नारद मुनि बोल रहे हैं, कृपया मेरे साथ साथ श्लोक का उच्चारण कीजिए। विचक्षणों सार हतिवीति तुम विभो अनंत पारस्य निर्वृत्त सुखम प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मना ततो भवान्नय शयचेष्टितं विभो। विचक्षणो स्यात् हतिवीदितुं विभो अनंत पारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। विचक्षणो स्यात् हतिवेदितुं विभो अनंत पारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। विचक्षणो स्यात् हतिवेदितुं विभो अनंत पारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। विचक्षणो स्यात् हतिवेदितुं विभो अनंत पारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। शब्दकात् विचक्षणः अर्थात् अत्यंत ही पटु, अस्य उसका अर्हित के योग्य है, वेदी तुम जानने के लिए विभो अर्थात भगवान का, अनंत पारस्य अर्थात असीम का, निवृत्त उससे निवृत्त सुखम अर्थात भौतिक सुख, प्रवर्तमानस्य यानी अनुरक्तों का गुण भौतिक गुणों से, अनात्मानः आध्यात्मिक ज्ञान से शून्य, ततः अतः भगवान आप दर्शय मार्गदर्शन करें चेष्टितम कार्यकलाप विभो अर्थात भगवान के अनुवाद। भगवान असीम है, केवल वही पटु व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका है। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण ठीक से स्थित नहीं है, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कठिन विषय है, विशेष रूप से जब उसे भगवान के दिव्य स्वभाव का वर्णन हो। यह ऐसा विषय नहीं है कि जिसे भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहने वाले व्यक्ति समझ सके। केवल वे ही इस महान विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक कार्यों से प्रायः संन्यास ले लिया है। श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो दिव्य अनुभूति में प्रवेश करने का अधिकारी होता है, और ऐसे हजारों स्वरूप शुद्ध व्यक्तियों में से कुछ ही व्यक्ति उस विशेष ब्रह्म ज्ञान को समझ सकते हैं जिसमें ईश्वर को पुरुष रूप में वर्णित किया जाता है। अतिव नारद श्री वेद व्यास जी को प्रत्यक्ष उपदेश देते हैं कि वे भगवान की दिव्य लीलाओं को बताते हुए ईश्वर के विज्ञान का वर्णन करें। व्यास देव स्वयं इस विज्ञान में पटु हैं और वे भौतिक भोग से विरक्त हैं, अतएव वे इसका वर्णन करने के अधिकारी व्यक्ति हैं, और उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी उनसे उसे ग्रहण करने के लिए सही व्यक्ति हैं। श्रीमद् भागवतम सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म विज्ञान है, अतएव यह जन्म सामान्य पर औषधि का सा प्रभाव दिखा सकता है। क्योंकि इस ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, अतएव भगवान तथा इस ग्रंथ में कोई अंतर नहीं है। यह ग्रंथ भगवान का साहित्य अवतार है। इस तरह जन सामान्य भगवान की लीलाओं का वर्णन सुन सकते हैं, इससे वे भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह क्रमशः भाव रोग से शुद्ध हो सकते हैं। यही नहीं, पटु भक्तगण ऐसी नवीन विधियां निकाल सकते हैं जिनसे वे देश तथा काल के अनुसार अभक्तों को बदल सकें। भक्ति गतिशील क्रिया है और पटु भक्तगण भौतिकतावादी जनता की मंद बुद्धि में से इसे प्रविष्ट कराने की कोई विधि निकाल सकते हैं। भगवान की सेवा के लिए भक्तों द्वारा संपन्न किए गए ऐसे दिव्य कार्यकलापों से भौतिकतावादी मनुष्यों के मूर्ख समाज में नवीन नवीन व्यवस्था लाई जा सकती है। इस ओर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके परवर्ती अनुयायियों ने विशेष दक्षता दिखाई है। इस विधि का अनुगमन करते हुए इस कला प्रदान युग के भौतिकतावादी मनुष्यों को शांतिमय जीवन तथा दिव्य अनुभूति की अवस्था प्रदान की जा सकती है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। आज नारद मुनि वेद व्यास जी को एक सत्य बता रहे हैं कि विचक्षणों से हरत, विचक्षण मतलब अत्यंत ही पटु, यानी कि नारद मुनि कह रहे हैं कि आप ही जानते हो और सब जानते हैं कि कोई साधारण व्यक्ति भगवान के इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता जिसके अंदर अत्यंत ही भौतिकता आसक्ति हो, यानी कि यदि वो भौतिक कार्यों में इतना आसक्त होगा, उसकी इंद्रिय तृप्ति की लालसा इतनी तीव्र होगी तो क्या चाहेगा कि मेरी इंद्रिय तृप्ति, क्योंकि वो अपने वेगों को कंट्रोल नहीं करा तो उसको क्या ग्रेजुअली इस स्थिति तक लाना पड़ेगा कि वो भगवान के विषय में सुन सके। अब वेद व्यास जी ने वही किया, क्योंकि वास्तव में सब जीवों की प्रवृत्ति है कि वो भौतिक भोगों को भोगे। अब उनको डायरेक्ट से कह दिया जाए कि ये सब तुमको मना है और कुछ नहीं कर सकते तुम सिवाय भक्ति के, तो वो इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकेंगे बल्कि गलत तरीके से इंद्रिय तृप्ति करेंगे। इसी वेदों में एक सही दिशा दी गई मानव को, और नारद जी कहते हैं विचक्षण, यानी जो बहुत ही अत्यंत ही पटु, पटु का मतलब होता है बहुत ज्यादा बुद्धिमान जो होते हैं, अस्य उसका अर्हित इसके योग्य वेदिकम जानने के विभु, यानी भगवान को जानने के योग्य कोई बेवकूफ व्यक्ति उन्हें नहीं समझ सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेशु कस्यत्यतति सिद्धये, ना जैसे श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि श्रीमद भगवत गीता में बताया गया है 19 में कि मनुष्यों में हर कोई मनुष्य, सब कोई मनुष्य सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं करता। मनुष्याणाम सहस्रेशु कस्यत्यतति सिद्धये, सहस्रेशु मतलब हजारों में से कोई एक ऐसी कोशिश करता है कि मैं सिद्धि प्राप्त करूं, यानी कि वो भौतिक भोगों की आसक्ति की ओर नहीं आध्यात्मिक रुचि दिखाता है ना, आध्यात्मिक की ओर रुचि दिखाता है। कितना? हजारों में से कोई एक। तो इसका मतलब है एक तो गया आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए, बाकी कितने बचे? 999। वो 999% क्या करेंगे? वो तो वही कुत्ते बिल्लियों की तरह आहार निद्रा भाई मैथुन में गर्क हो जाएंगे। तो उनके लिए ये समस्त शास्त्र जो क्रम से भगवान की ओर लेकर जाएंगे वो बहुत अत्यधिक आवश्यक थे, क्योंकि भगवान के विषय में तो कोई एक, आध्यात्मिक विषय में तो कोई एक समझने की कोशिश करता है। और भगवान आगे कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित् यदपि सिद्धये यदतामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्त्वतः। अब इन जैसे हजार में से एक ने तो क्या क्या सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन ऐसे करते करते जब वो सिद्धि प्राप्त करने वाले हजार बन गए तो उनमें से भी कोई एक ऐसा होता है कश्चित् माम वेति तत्त्वतः जो मुझे जानने की कोशिश करता है। तो भगवान के विषय में तो फिर अब उन जो सिद्धि प्राप्त करने वाले जिन्होंने कोशिश की है उनमें से भी एक गया भगवान की ओर, बाकी 999 कहाँ जाएंगे? वो अलग अलग दिशाओं में योग साधना में चले जाएंगे, या परमात्मा की ओर, या ब्रह्म ज्ञान की ओर, या कोई और रास्ता। भले वो इंद्रिय तृप्ति छोड़ रही उन्होंने, भौतिक आसक्ति खत्म, लेकिन फिर भी कृष्ण की पवित्र लीलाओं की ओर आकर्षित होना हर किसी की बस की बात नहीं है, है ना। भगवान कहते हैं कि जब भगवान कहते हैं 19 में बहुनाम जन्म नामते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के बाद जब जीव को इतना ज्ञान प्राप्त हो जाता है तभी वो मेरी शरण में आता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, अगर कोई ये जान लेता है कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही सर्व कारणों के कारण है, वही पूजनीय है, वही भगवान है, तो वो कोई साधारण जीव नहीं होता है, स महात्मा सुदुर्लभ, वो बहुत बहुत दुर्लभ होता है, वेरी रेयर है। ऐसा महात्मा प्राप्त होना, अभी हम लोग को ऐसा लगता है ना कि देखो वेद व्यास जी ने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं जिसके कारण लोग भटक रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण को अपना केंद्र नहीं बना पा रहे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को केंद्र बना पाना इतना आसान नहीं है। जब तक जीव ये रियलाइज नहीं कर लेता कि भौतिक वस्तुओं में कोई आसक्ति नहीं है, जब तक जीव को इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं से विरक्ति नहीं हो जाती, जब तक जीव अपने आप को दास नहीं मान लेता, जब तक जीव काम और क्रोध से निवृत्त नहीं हो जाता, जब तक जीव के समस्त पापों का खंडन नहीं हो जाता। भगवान कहते हैं 7.28 में, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा, जिनके समस्त पापों का खंडन हो जाता है और जो पुण्य कर्मी जो लोग होते हैं, जो ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त, जो समस्त द्वंद्वों से मोह से मुक्त हो जाते हैं, भजन्ते माम दृढ़व्रता, मेरी शरण में मुझे तो केवल वही भजन कर सकते हैं। तो कोई साधारण व्यक्ति के बस, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम आज जो इतनी रुचि दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, भले रुचि जितनी भी हमारे अंदर है, लेकिन कृष्ण को सर्वस्व मान रहे हैं, भागवतम महापुराण को श्रवण कर रहे हैं और भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहे हैं, तो भगवान ने साफ साफ कह दिया कि वो कोई साधारण प्राणी नहीं है। अनेक अनेक जन्मों के बाद हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमने चाहा और हो गया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमियते कौन भाग्यवान जी, कि अभी देखो कितने सारे ब्रह्मांड हैं, कारण लक्षण विष्णु की श्वासों से अनेक अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं और उनकी सांस लेने से वो अंदर भी जा रहे हैं। तो इतने सारे ब्रह्मांडों में से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कौन भाग्यवान जीव, एक ही कोई भाग्यवान जीव होता है, गुरु कृष्ण कृपा पाइए भक्ति लता भी, जिसके ऊपर गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाती है जिसको, और वो भौतिक वस्तुओं से उसकी आसक्ति समाप्त हो जाती। बाकी सारे जो ब्रह्मांडों में जीव भ्रमण कर रहे हैं, उनको तो अपने जीवन का लक्ष्य न जाने कितने जन्मों के बाद प्राप्त होगा, लेकिन वो जिसने भक्ति का बीज जिसको प्राप्त हो गया है, भले ही वो भक्ति का बीज अभी तक फूटा नहीं है, लेकिन उसे ये प्राप्त हो गया है जो कृष्ण भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो गया है, तो जिस वो वैसा इतना दुर्लभ व्यक्ति है जिसके ऊपर गुरु और कृष्ण की कृपा हुई है। तो यहाँ पर नारद मुनि बोल रहे हैं कि विचक्षणों से अर्हिता वेदी तुम विभू, के भगवान के विषय में सुनने की इच्छा बहुत ही अत्यंत पटु लोग होंगे, जो बहुत ज्यादा ज्ञानी होंगे, जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होंगे, उसी को ये ज्ञान समझ में आएगा। इसीलिए क्योंकि भगवान असीम है, अनंत परास है, भगवान बहुत असीम है, उनको उनके विषय में समझना साधारण व्यक्ति के पास की बात नहीं है। उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, निवृत्तितः सुखम, सुखों का मतलब होता है ये जो भौतिक इंद्रिय सुख जो है उनसे निवृत्त होना पड़ेगा। जीव को ये समझना पड़ेगा, भगवान की भक्ति में आने से पहले जब जीव ये समझ जाता है कि भौतिक सुख में कोई आनंद नहीं है, बल्कि वो तो हमारे दुख का कारण बनते हैं, जैसे कि हम भगवत गीता में 5.23 में पढ़ा, 22 में पढ़ा, ये ही संस्कर्ष जा भूखा दुख यो नयत, कि वो तो दुख का कारण बनते, जो भौतिक इंद्रियों के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है तो वो तो दुख का कारण बनता है। तो जो व्यक्ति इन भौतिक सुखों से निवृत्ततः सुखम, वो इन भौतिक सुखों से निवृत्त हो जाता है और प्रवर्तमानस्य गुणाय अनात्मनः, और जो भौतिक गुण है तीनों गुणों से, जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं त्रय गुणिया विषया वेदा निस्त्रय गुणियों भवार्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है, शुद्ध सत्व में आना है। तो जब तक जीव को के अंदर भौतिक आसक्ति पड़ी हुई है, तो फिर वो शुद्ध सत्व में नहीं आएगा। इसीलिए वेद व्यास जी ने समस्त वेदों में ये समस्त इच्छाएं पूरी करने की, भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की, भौतिक सुख प्राप्त करने की सारी पद्धतियां बता दी कि करके देख लो, जब संतुष्टि ना मिले उसके बाद, जिस तरह मैंने भी करके देखा, मैंने सारे शास्त्रों को लिखा, उसके बाद भी मुझे संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, तो ये तो भगवान जो है एक लीला कर रहे हैं नारद मुनि और वेद व्यास जी के द्वारा, जिससे मानव जाति को ये समझाना चाहते हैं कि देखो वेद व्यास जी ने इतना सारा लिखा उसके बाद भी उसको आनंद नहीं आया तो तुम्हें पढ़ के क्या आनंद आएगा। फिर भी यदि तुम करना चाहते, फिर भी जब इतने सारे शास्त्रों, अभी श्रीमद् भागवतम को लिखे हुए 5000 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवतम को पढ़ने वाले या उसको समझने के लिए लोग इतना ज्यादा आकर्षित नहीं होते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि अभी तक उनकी भौतिक इच्छाएं समाप्त नहीं हुई है, अभी तक वो शुद्ध सत्वों में अभी तक वो स्थित नहीं हुए हैं, अभी तक भौतिक गुणों के असर में है, भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए वो प्रेरित है, तभी तो वो दूसरी दूसरी जगह पर आनंद खोज रहे हैं। लेकिन यहाँ शाह साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक भगवान के शरण में नहीं आ जाता जीव, तब तक उसे आनंद प्राप्त करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि भौतिक सुख जो वो बाकी जितनी भी तरीकों से प्राप्त कर रहा है वो तो उसके दुख के कारण बन रहे हैं। अब नारद मुनि कहते हैं, ततो भवान् दर्शय चेष्टितम्। ततो मतलब अतः, भगवान यानी आप, दर्शय यानी मार्गदर्शन करें, क्योंकि बाकी सब तो इंद्र तृप्ति की ओर जाएंगे, लेकिन जो अत्यंत पटु होंगे, जिन्होंने भौतिक आसक्ति का परित्याग कर लिया होगा और जो भौतिक गुणों से ऊपर आगे होंगे, उनके लिए दर्शय मार्गदर्शन कीजिए उनका, और चेष्टितम कार्य कलापों को बयान कीजिए विभो भगवान के। यानी कि आप चलो ठीक है, बाकी लोग के लिए आपने बहुत सारे शास्त्रों को लिख लिया जो कि भगवान की ओर आकर्षित नहीं होंगे, तो फिर इन भौतिक वस्तुओं की ओर ही आकर्षित होंगे, तो उनको एक नियमित रूप से आपने बता दिया। लेकिन जो पटु हैं, जो कि वास्तव में जिन्होंने भौतिक सुखों का परित्याग कर दिया है, जो भौतिक गुणों से ऊपर हो गए हैं, जो काम क्रोध इत्यादि से निवृत्त हैं, अब उनका मार्गदर्शन कीजिए कि उनके हृदय के अंदर पवित्र प्रेम उत्पन्न हो सके भगवान का। क्योंकि जब तक हम श्रीमद् भागवतम महापुराण से भगवान की लीलाओं के विषय में नहीं पढ़ते हैं, शुद्ध वैष्णवों से श्रवण नहीं करते हैं, तब तक भले ही हम शुद्ध भी हो जाएंगे लेकिन पवित्र प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर भागवतम महापुराण के विषय में यदि हम उनके अंदर भगवान के विषय में पढ़ते हैं तो सत्योरिध्यवरुध्यते प्रकृति भी शुश्रूषुधि दक्षिणात्। तो जो कृति भी है, जो पवित्र व्यक्ति हैं, जिनकी भौतिक आसक्ति समाप्त हो गई और भगवान के चरणारविंदो की ओर आकर्षित हो गए हैं, जब वो भागवत महापुराण के विषय में श्रवण करते हैं तो शुश्रूषु यदि वो सुनने की इच्छा प्रकट करते हैं, उसी समय उनके हृदय में भगवान आकर बंदी बन जाते हैं और भगवान का प्रेम उनके हृदय में आकर बस जाता है। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्योंकि वेद व्यास जी स्वयं इन भौतिक भोगों से विरक्त हैं और इन समस्त गुणों से ऊपर हैं, इसीलिए वो भगवान के इन गुणों का भगवान के विषय में वर्णन करने के अधिकारी व्यक्ति, और सुखदेव गोस्वामी क्योंकि उनसे ग्रहण करने के लिए सही व्यक्ति हैं, उनके अंदर भी वो सारी क्वालिटीज हैं, तो वो जो है वो श्रीमद् भागवतम महापुराण के उच्चारण करने के लिए एकदम सही अधिकारी व्यक्ति हैं। भगवान के नाम गुण लीलाओं में कोई अंतर नहीं होता। ये श्रीमद् भागवतम जिसके अंदर भगवान के विषय में भगवान की लीलाएं लिखी हुई हैं, तो यह ग्रंथ भगवान से पृथक नहीं है, भगवान से भिन्न नहीं। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं यह ग्रंथ भगवान का साहित्य का अवतार है। तो जब जो शुद्ध जीव इस श्रीमद् भागवतम के माध्यम से भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनेंगे, तो क्योंकि इस संसार में सब लोग बहुत दुखी हैं, बहुत रोग है उनको, बहुत ही बार बार भौतिक आसक्ति में गिर जाते हैं, लेकिन ये भावरोग की सबसे बड़ी औषधि है कि जब जीव भगवान के विषय में श्रवण करेगा शुद्ध भक्तों के द्वारा, तो उसके हृदय की ये मलिनता, उसके हृदय का ये जो भावरोग है वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त एक सुंदर बात श्री प्रभुपाल जी ने तात्पर्य में बताई कि ठीक है, जो शुद्ध भक्त होंगे वो तो पढ़ेंगे और सुनेंगे, उनके तो हृदय पवित्र होंगे, लेकिन शुद्ध भक्त जो है वो भगवान से भी ज्यादा कृपालु हैं। वो ऐसी सी विधियों से श्रीमद् भागवतम महापुराण का प्रचार करेंगे, श्रीमद् भागवतम की कथाएं करेंगे रुचिकर, तो फिर क्या होगा कि जो जन सामान्य है जो कि भगवान की ओर ज्यादा आकर्षित नहीं होते हैं, तो ऐसे शुद्ध भक्त लीलाएं करते हैं भगवान की, जिनकी और जो लोग इतना ज्यादा भगवान की ओर आकर्षित नहीं होते हैं फिर भी वो नाटक देखते हैं, उन जो ये प्रतिक्रिया होती है, ये भक्त लोग जो संकीर्तन मिलकर करते हैं, उससे क्या होता है उनका हृदय भी पवित्र होने लगता है और परिवर्तन इतना आ जाता है कि वो भी भगवान की लीलाओं में, भगवान की कथाओं में, भगवान के नाम में रुचि दिखाने लगते हैं। क्योंकि इस कलयुग में जीवों की, जितने भी जीव हैं, उनकी लाइफ बहुत अशांत है, बहुत क्रिटिसाइज, बहुत दुख है, बहुत प्रॉब्लम है, तो जब इतना स्वस्थ उनको मिलेगा जिसमें केवल भगवान के प्रति प्रेम के विषय में संदेश होगा और आनंद होगा इतना, तो लोग उसकी ओर आकर्षित होंगे। और चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा किया, वो भगवान के पवित्र नाम गुण लीलाओं का वर्णन करते और लोग जो बहुत ज्यादा आकर्षित हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने हमें यही आदेश दिया है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कि मेरा ये आदेश है कि तुम जिसे देखो कृष्ण के विषय में बताओ, क्योंकि वो इतना दुखी है, इतना संसार में इतना रोगी है कि जब वो कृष्ण के विषय में सुनेगा तो उसके दुख समाप्त हो जाएंगे और भगवान की ओर आकर्षित हो जाएगा और उसके भौतिक रोग बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे और वो अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करेगा, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा। और जब तक हमारे पास श्रीमद् भागवतम महापुराण के द्वारा यदि हमारे पास ये साहित्य न होता तो हम भगवान के विषय में किसी को क्या बताते, कैसे सीखते। ये चैतन्य महाप्रभु की और श्रील वेद व्यास जी की, नारद मुनि की और विशेषकर श्रील प्रभुपाद जी की हमारे ऊपर अत्यंत कृपा है कि उन्होंने इस साहित्य को हमें इतना सरल करके दिया है कि हम इसको पढ़कर समझ सकते हैं और जन सामान्य को भी इसके विषय में बताकर उनका कल्याण कर सकते हैं जो कि इस भौतिक दुखों के सागर में गोते खा रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम अत्यंत ही महत्वपूर्ण शास्त्र है, इसीलिए क्योंकि वेद व्यास जी ने उनको कोई कच्ची अभी तक स्टार्ट में नहीं लिखा है ना। जैसे हमने पढ़ा श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, कि जब वेद व्यास जी ने समस्त शास्त्रों के विषय में बता दिया उसके बाद इसका संकलन किया, यानी वेद व्यास जी ये बताना चाहते। अब देखो खाली अगर उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण ही लिखा होता तो जन सामान्य के अंदर उसके ऊपर इतना विश्वास नहीं होता, क्योंकि अब एक ही चीज है, जैसे आपके पास एक ही डायमंड हो वो मतलब कोई भी चीज हो एक ही है तो उसकी इतनी इम्पोर्टेंस आपको नहीं पता चलती है ना। जैसे अगर है ना आपके पास समझो एक ही चीज हो, एक ही मोबाइल है समझो, आपको पता नहीं है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन अगर आपके पास चार मोबाइल होंगी तो आप क्या करोगे, ये मैंने पहले लिया था उसके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये वाला जो है ना वो इतना अच्छा है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना एक्सपेंसिव है और ये एकदम सुपर है, इसको यूज करो तो फिर कुछ और अच्छा ही लगता है ना। तो उसी तरह से बाकी सारे शास्त्र देने का कारण क्या है कि वो इतने सारे शास्त्रों के पढ़ने के बाद भी जीव का इतना कल्याण नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि उन समस्त शास्त्रों में भले ही वो वेदव्यास जी के द्वारा लिखे हुए हैं लेकिन कुछ कमी है। इसीलिए कहा श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परै रीश्वर। वेदव्यास जी स्वयं अपने भागवतम में लिख रहे हैं कि मैंने परिपक्व अवस्था में श्रीमद् भागवतम महापुराण की रचना की है, तो उसको पढ़ने के अतिरिक्त और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहते हो, यदि हृदय में कृष्ण को बंदी बनाना चाहते हो, तो केवल एक यही ग्रंथ काफी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। कि मैं गुरु और गौरांग की अच्छी सेवा करके उनका प्रसन्न कर सकूं।